हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अदिति ने पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनी और उसकी नज़र उस सीसीटीवी कैमरे पर टिक गई जिसकी ओर इंस्पेक्टर ने इशारा किया था। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। अभी तक जो आक्रोश और दर्द उसकी आंखों में था वो धुंधलाने लगा था और उसकी जगह एक ठंडा भय लेने लगा। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं बल्कि एक अचानक आई घबराहट से। उसकी नज़रें कैमरे से हटकर टूटे हुए कंप्यूटर, बिखरे कागजातों और उस उल्टी टेबल पर घूमने लगीं जिसके पीछे से कुछ कागज़ के टुकड़े अभी भी झांक रहे थे। उसकी असिस्टेंट, जो अब तक उसके पास खड़ी थी, उसने उसकी बदलती हालत देखी और धीरे से पूछा, मैडम आप ठीक हैं? अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा था। सीसीटीवी फुटेज, सबूत, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखेगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो रूहान से क्या करवाना चाहती थी और उसने सामने से उसकी पत्नी की इंसल्ट भी की थी और पता नहीं क्या क्या कहा था। और अगर ये सब कुछ दुनिया वालों के सामने आ जाएगा तो इतने सालों की मेहनत से उसने अपना जो नाम और करियर बनाया है वो पल भर में डूब जाएगा और वो सबके सामने सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगी। अदिति ने जल्दी से अपने बालों को पीछे करते हुए इंस्पेक्टर के सामने आकर कहा, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन मैं इनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं अपनी इंडस्ट्री में अभी से दुश्मन बनना शुरू कर दूँ। अभी अभी मेरा नाम बना है तो मैं वेदांत निमानी जितने बड़े नाम से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। जो हो गया मैं उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर वेदांत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पर पुलिस को बुलाने वाली तो आप ही थीं, अब पीछे क्यों हट रही हैं? मैं नहीं चाहता मेरे बड़े नाम की वजह से मेरा भाई गलत काम करता ही रहे। मैं चाहता हूँ उसे उसकी सज़ा मिले अगर उसने वाकई कुछ गलत किया है। पुलिस इंस्पेक्टर भी वेदांत की बात से सहमत थे। उन्होंने गुस्से से एक नज़र रूहान को देखा जो अभी भी बस अनाही को डर के मारे रोकने की कोशिश कर रहा था। पर फिर उन्होंने अदिति की तरफ देखकर कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी का कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, ये पुलिस इंस्पेक्टर हमेशा सच का साथ देगा। और रूहान निमानी को कम से कम 3 साल की सज़ा होगी अगर उन्होंने वाकई आपके साथ इतना गलत किया है। मुझे सख्त नफ़रत है उन लोगों से जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं और उन्हें लगता है अगर वो अकेली हैं तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मैडम। अनाही ने जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनी उसे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के आंसू और भी ज़्यादा गिरने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के लायक ही नहीं है और ना ही उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो सकता है। कोई उसका अपना नहीं है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, आखिर में वही उसे धोखा देता है। चाहे वो उसके परिवार वाले हों या फिर उसके सामने खड़ा उसका पति, हर कोई बस उसके सामने झूठ बोलता रहता है। उसे अब एक एक करके सारी बातें याद आ रही थीं। कैसे पहले उसके पिता ने उसे झूठ बोला कि वो उसकी बेटी है, उसके बाद उसके पति ने उससे बातें छुपाईं कि उसकी पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसके बाद उसका पति उसके सामने अच्छा बनता रहा जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो, तो वो कभी इतना बुरा भी बन सकता है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। उसने रोते हुए कहा, आज आपने मेरी बातों को सच साबित कर दिया रूहान जी। मैंने आपको फ़ोन किया था, मेरे दिल के साथ मत खेलिए, मैं नहीं सह पाऊंगी। लेकिन इसके बावजूद आपको मुझ पर तरस नहीं आया। अब जब आपको लगने लगा है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको क्या मिला ये सब कुछ करके? अब मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। रूहान ने बाकी किसी की बातें नहीं सुनी थीं और ना ही उसे किसी की बातों से फ़र्क पड़ रहा था। उसके दिल में तो बस एक ही डर बैठता जा रहा था कि उसकी मैडम जी उससे दूर जा रही हैं। उसने जल्दी से अनाही के पास आकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कैसा भी बन जाऊं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं और यही फाइनल है। चाहे मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े, अब आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। आपने फ़ोन किया था आपको वो दिख गया, लेकिन मैंने भी आपको फ़ोन किया था कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे छोड़कर चली जाइए। फिर आपने मुझे विश्वास दिलाया कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो अब आप भी नहीं बदल सकती हैं। आप मुझे कंप्लेन कर रही हैं ना डबल फेस होने की, तो फिर आप कैसे डबल फेस प्ले करेंगी? आपको तो वैसा ही रहना पड़ेगा ना जैसा आप रहती आ रही हैं मेरे साथ। रूहान बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह रोते हुए ये सब कुछ बोल रहा था, वो बच्चा जो सिर्फ अपनी मैडम जी को अपने पास चाहता है। ना ही उसे अनाही की नज़रों में अच्छा बनना है और ना ही बुरा बनना है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनाही उसके बारे में क्या सोच रही है, बस अनाही उसके साथ रहे, उसके पास रहे, इसके अलावा उसे फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। अनाही ने गुस्से में रूहान के हाथ छटके और फिर लगभग दौड़ते हुए उसके केबिन से बाहर चली गई। रूहान भी उसके पीछे पीछे जाने वाला था कि इंस्पेक्टर ने जल्दी से रूहान की बाजू पकड़ ली। रूहान ने किसी घायल शेर की तरह उस इंस्पेक्टर को देखा। एक पल के लिए वो इंस्पेक्टर रूहान की आंखों में आया गुस्सा देखकर डर गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ रूहान के हाथ पर कमजोर नहीं की थी, क्योंकि फिलहाल ये तय नहीं हुआ था कि रूहान जेल जाएगा या नहीं, और इस सिचुएशन में रूहान यहां से कहीं जा नहीं सकता था। तभी रूहान ने गुस्से में उस पुलिस वाले को झटका और अगले ही पल उसका गला पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तुम्हारी वजह से मेरी मैडम जी मुझसे दूर चली गईं। ये देखकर वेदांत की आंखें फैल गईं। अदिति का पता नहीं, लेकिन ये पुलिस वाले इस कांड के लिए जरूर रूहान को जेल ले जाएंगे। ये देखकर वेदांत तेजी से उसके पास आया और अगले ही पल उस पुलिस वाले को रूहान से अलग करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक गलती कर चुके हो, उसके बावजूद गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे पास रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगी। तुम खुद को सुधारने की बजाय लोगों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी वजह से अनाही तुमसे दूर जा सकती है। अगर कोई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहे हो, वरना वो तो हमेशा तुम्हारे पास थी और हमेशा ही तुम्हारे पास रहना चाहती है। अभी भी देर नहीं हुई है, जाकर उससे सॉरी बोलो और ये भी बोलो कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रूहान ने गुस्से में मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, ऑफकोर्स मैं करूंगा, आइंदा भी मैं ऐसा करूंगा। अगर कोई लड़की मेरे पास आने की कोशिश करेगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यहां सिर्फ मैंने इसका गला पकड़ा था, और अगर मेरी मैडम जी के बारे में घटिया बातें बोलेगी तो ये सब कुछ करने से पहले मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। इतना बोलकर रूहान ने गुस्से से घूरते हुए अदिति की तरफ देखा, जो अपना गला सहलाते हुए अब डर के मारे उन लोगों की तरफ देख रही थी। रूहान की बातें सुनकर वेदांत की आंखों में कन्फ्यूजन आ गया था। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम पूरी बात बता सकते हो, यहाँ क्या हुआ था और तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? रूहान ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे कुछ भी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस यहाँ से जाना है, अपनी मैडम जी के पास जाना है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? रूहान बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जिससे वेदांत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या करूं मैं इस पागल लड़के का।
फिर उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं ना, इसको जाने दो। आई प्रॉमिस, अगर ये गलत हुआ तो मैं खुद इसे आपके पास लेकर आऊंगा। इंस्पेक्टर तो बेचारा खुद रूहान से डर चुका था, इसलिए उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद वेदांत ने रूहान की तरफ देखा, जो अब उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से अभी अभी आना ही गई थी।